सम्मान योग गुरु सत्संग जीव सनेमर गुरुदेव जी फतेह कबूल करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आदि काल तो धार्मिक चिंतक लोगों की पकड़ विच एक गल आई, इस दृश्यमान जगत विच कुछ ऐसा जरूर है, इस अस्थूल दुनिया में जरूर कुछ ऐसा है जो सूक्ष्म है, इस रूपवान जगत में लाजमी कुछ ऐसा है जिन्हों कह सकते हैं अरूप है, रूपवान नहीं है। एक नू सरगुण कहा, एक नू निर्गुण कहा, जो दृश्यमान सरगुण, जो अदृश्य निर्गुण, जो अस्थूल सरगुण, जो सूक्ष्म निर्गुण, जो रूपमान सरगुण, जो अरूप वो निर्गुण। धार्मिक दुनिया दो हिस्सों की तकसीम हुई। किसी ने कहा यात्रा सरगुण तो शुरू करनी है, निर्गुण तक पहुंचना है, रूप तो शुरू करनी है, अरूप तक पहुंचना है। दृश्यमान नू बगलगीर होके अदृश्य तक पहुंचना है। कुछ ऐसे भी पुरुष पैदा हुए सूझमान, जिंदगी बड़ी थोड़ी है, पहले दृश्यमान जगत तक पहुंचिए फिर अदृश्य, पहले अस्थूल तक पहुंचिए फिर सूक्ष्म, पहले सरगुण की परिक्रमा करिए फिर निर्गुण तक पहुंचिए। जीवन छोटा है, जिंदगी छोटी है, और इस दियां बेशतर कुछ लोड़ा ने जिदे समा बहुत खर्च आता है। सीधे ही निर्गुण नाल जुड़न की कोशिश करो। इस दे इंज कह लो, इस्लाम ने ऐलानिया कह दिता कि असी खुदा के निर्गुण रूप में मनते हैं, सरगुण में नहीं। मुहम्मद साहब का एक नाम पै गया बुत शिकन, बुतान तोड़न वाला, मूर्तियां तोड़न वाला। फिर उसके पैरोकार, मुहम्मद साहब के पैरोकार भी करीबन करीबन जिथे उन्होंने कोल ताकत आई सता आई बुत शिकने की थी, मूर्तियां तोड़न की कोशिश की थी। सीधे अरूप नाल जुड़ी है। यह देश जिथे जैन मत सी, बौद्ध मत सी, सनातन मत सी, इन्हों तिना की धारणा यही बन गई रूप तो अरूप तक पहुंचना है, मूर्तियां ही मूर्तियां, अनंत मूर्तियां। रूप तो अरूप तक पहुंचना है, अस्थूल तो सूक्ष्म तक पहुंचना है, सरगुण की परिक्रमा करके निर्गुण दे चलीन होना है, सरगुण नो साधना का अंग बनाना है। सरगुण साधना है, साधना की सफलता निर्गुण की प्राप्ति। गुरमत का जमाना आया और करीबन करीबन समुचा जगत धार्मिक तल से दो हिस्सों की तकसीम से, कोई निर्गुण का दावा करता सी, कोई सरगुण का, कोई रूप की परिक्रमा करता सी, कोई अरूप की साधना करता सी, कोई रूप नू सजदे करता सी, कोई अरूप विच ध्यान जोड़न की कोशिश करता सी। गुरमत ने ऐलानिया कहा निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। सरगुण निर्गुण दी कला है, निर्गुण कलाकार है, सरगुण उसकी कला है। निर्गुण चित्रकार है, सरगुण उसका चित्र है। बावन अखरे देखते बड़े सुंदर बोल ने, चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चे तो चितकारी, चित्र बचित्र है अवचेरा, तज चित्रे चितराख चितेरा। भगत कबीर जी दी बावन अखरे। आप कहने में चचे तो चार शब्द तो ए प्रेरणा लिए, हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत कर रही है, और अखरां दा जोड़ ही ते ज्ञान बनता है। अखरी नाम अक्सी, अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिरसन जोग बखाण। अखरां दा जोड़ ही गाल बनता है, अखरां दा जोड़ ही बंदगी बनता है, अखरां दा जोड़ ही तकरार बनती है, अखरां दा जोड़ ही ते विचार बनती है, अखरां दा जोड़ ही झगड़ा है, अखरां दा जोड़ ही ते गीत है संगीत है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। मनुखी दुनिया विच जितने संजोग बनते ने अखरां करके, जितने संजोग टुटते ने अखरां करके, दो भरावां दे चनाचाती हो गई दो बोल करके, दो दुश्मन बगलगीर हो गए ने दो बोलां करके। अखरां दे जोड़ टुटे दिलां नूं जोड़ सकते ने, संजोग बना सकते ने, अखरां दा जोड़ दिल तोड़ भी सकते ने। खैर इते वी विचकार गल आ गई, सब कुछ अखरां दे चै ए चाह चचा। कबीर कहिंदे मैनूं इह प्रेरणा दे रहा है, चचा रचत चित्र है भारी, तद चित्रे चेतो चितकारी। चूंकि चित्रकार असीम है, ये कलाकार असीम है, तो इसकी कला भी असीम है, इसका चित्र भी इतना ही वड्डा है जितना वो आप वड्डा है। कृत तो करते दी महानता का पता चलेगा, बेसुरा गा रहे है, ताल देच नहीं है, तो पता चल जाता है इस मनुख की संगीत की साधना कितनी हो गई, तो कुछ भी नहीं है। ये ताल देच भी नहीं है, सुर देच भी नहीं है, तो सुर ताल नूं ही ते संगीत कहिंदे ने, गा रहे है संगीत ना सुर ना ताल। पर सुर दे चाहे ताल दे चाहे समय नूं बन के रख देता है। इस कृत तो संगीतकार दी इस कृत तो, क्योंकि संगीत संगीतकार दी कृत है, तो करते दा पता चलता है मामूली संगीतकार नहीं, बहुत वड्डा है, महान है। अपने विचों इसने ऐसे अदुत्ती संगीत नूं जन्म दिता है, तो वो परिपूर्ण परमात्मा हर पख दा कला दा ज्ञानी है। तू सर्व कला का ज्ञाता, परमात्मा वर्गा होर कोई संगीतकार नहीं, और सारा संगीत उसे तो आउंदा है। परमात्मा वर्गा होर कोई कवि नहीं, सारी कविता उसे तो आउंदी है। परमात्मा वर्गा होर कोई विज्ञानक नहीं, सारा विज्ञान उसे तो आउंदा है। परमात्मा वर्गा होर कोई ज्ञानी नहीं, सारा ज्ञान उसे तो आउंदा है। वो कला दा सागर है, वो गीत दा सागर है, संगीत दा सागर है, ज्ञान दा सागर है। सारी बरखा सागर करके है, सारिया नदियां दा चलन सागर करके है, सारा गीत संगीत ज्ञान विज्ञान परमात्मा करके है, ईश्वर करके है, सब कुछ उसे तो आंदा है। बहुत वड्डा कलाकार है। एक गल वखरी है कि साड़ी कोई तस्वीर बना देवे, ते तस्वीर दे बड़े सोहने रंग भर देवे, असी दाद देंदे थकदे नहीं, भई ये ते कमाल दा चित्रकार है। पर गजब दी गल जिसने जीवदी जागदी ये तस्वीर बना दित्ती, उस चित्रकार नूं कदे चेते नहीं कीता। जो एक गुलाब दे फुल दा चित्र बना दे, असी कहिंदे आ इस दे हथ चुम लईए, ऐसा सुंदर फुल, बनाया है इसने, इतना खूबसूरत, इतनी जीवदा जागदा लग रहा है, मुर्दा है, तस्वीर है, फिर भी दाद दे रहे हैं, कला है। और जिसने जीवदा जागदा फुल बनाया उस कलाकार का कभी ख्याल भी ना किया। पुराने जमाने दे किसी महापुरुष की महिमा इस तो नापी जाती सी इसके कोल कला कितनी है। तो मैं जो सनातन मत के अवतारी पुरुषों बारे पढ़िया, कोई दो कला का अवतार, कोई तीन कला अवतार, कोई चार कला अवतार, राम नू कहिंदे ने 14 कला अवतार, कृष्ण नू कहिंदे ने 16 कला संपूर्ण अवतार। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इशारा भी करते हैं 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। 16 तरह की कला इस देश निपुण सन श्री कृष्ण, किसी एक कला देश भी मनुख पूर्ण तौर पर निपुण नहीं हो सकता। मैं देखा जो चोटी के शायर ने कवि ने वह संगीतकार नहीं ने, जो चोटी का संगीतकार है वह चित्रकार नहीं है, और जो चित्रकार है वो कोई अजीम संगतराश नहीं है, और जो चोटी दे संगतराश ने वो कोई महान नृत्यकार नहीं है, और जो महान नृत्यकार है वो कोई चोटी का साइंटिस्ट नहीं है, विज्ञानक नहीं है। किसी एक कला दे ही मनुख पूर्ण तौर पर निपुण हो सके ये भी औखा है, पर कोई 16 कला दिच निपुण हो जाए तो आम बंदे ने तो हैरान होकर कहना सी ये आम इंसान नहीं, ये तो कोई अवतार है। 16 कला संपूर्ण पलिया, श्री कृष्ण बहुत अच्छे नृत्यकार सन, बहुत खूबसूरत नृत्य कर लेंदे सन, बहुत अच्छे संगीतकार सन, बहुत अच्छे वजंत्री सन, मुरली जिस ढंग दी वजांदे सन, मनुख ते होश गवा बैठते सन, पशु पक्षी भी दाणा दुणका चुनना भुल जाते सन, चलना भुल जाते सन। दूर क्यों जाइए, इस झलक नो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी पेश किया है, कृष्ण की इस झलक नो। यह गल वखरी है, इस देश को फुरसत किथे है कि कोई गुरु गोबिंद सिंह जी नू पढ़े। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 24 अवतारां की कथा लिखी है, ज्ञान प्रबोध लिखे है, अकाल उस्त लिखे है, चंडी चित्र लिखे है, विचित्र नाटक लिखे है, रामा अवतार लिखे है, कृष्णा अवतार लिखे है, जफरनामा लिखे है। पढ़न का वेल किस को है, कौन पढ़े? लोगों ने सिर्फ इतना ही जाने है, बहुत अच्छी तलवार चला लेंदे सन, बहुत अच्छी बंदूक चला लेंदे सन, बहुत अच्छी तीर कमान चला लेंदे सन। बिल्कुल चीदा चीदा मनुखा नूं पता है उन्हां दी कलम दे चों रब्बी नगमे निकलदे सन, उन्हां दी जबान चों रब्बी संगीत निकलदा सी, उन्हां दी आत्मा चों रब्बी गीत निकलदे सन। ये बहुत घट लोगों नूं पता है। ये तलवार चलानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते ये कहने मेरा शौक नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। ये तलवार चुकने मेरी खुशी नहीं है, मेरी मजबूरी है। साफ लिखे जफरनामे, बलाचार गे दरम्या आमदम बतद बीरो तीरो तुफंग आमदम। है औरंगजेब, इत मैं लाचार होके तलवार चुक लई है मेरी खुशी नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, हो भी नहीं सकता। हेमकुंड दा तपेश्वर दिन रात ध्यान साधना दे चलिया होवे, पुराने संस्कार ते ए होवन, लेकिन मजबूरी इत्थे तक अपड़ गई होवे कि तलवार चुकनी पवे। और गजब दी गल, इस सच्चाई नू सतगुरु ने कबूल कर लिया, बलाचार भी लाचार होके मजबूर होके ए मैं तलवार चुकी है। बलाचार भी दरम्या आमदम बतद बीरो तीरो तुफंग आमदम। ये तुफंग जो मैं पकड़ ली, ये बंदूक जो मैं उठा ली, ये तीर कमान जो मैं पकड़ ली, ये जो मैं तलवार चुक ली, ऐ औरंगजेब, ये मेरा शौक नहीं, ये मेरी खुशी नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है। मैं देखिया तेरा दिल दिमाग इतना पत्थर है ना ज्ञान का असर कबूल करता है ना किसी दलील नू मनदा ना शांति दे संदेश नू मनदा तो मजबूरन मैनु पत्थर नू तोड़न ले पत्थर चुकना पे मजबूर मेरी मजबूरी है मेरी खुशी नहीं दुनिया दे जितने अवतारी पुरुषा ने अगर शस्त्र चुके है धनुषबाण राम ने चुके है सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है मोहम्मद साहब ने भी तलवार चुक ली उसने इस्लाम लिख दिता अमन सलामती ली ऐसे पुरुषों की यह मजबूरी रही है वरना उन्होंने स्वभाव दे रब्बी गीत है रब्बी संगीत है समाधि है आनंद है अडोलता है छोटी जी ठोकर खा के मनुख सिकवियां नाल भर जाता है गिलियां नाल भर जाता है पता नहीं रब है कि नहीं आनंदपुर साहब लुटिया जा चुके हैं बर्बाद हो गया है सिख मारे जा चुके हैं परिवार उजड़ गए बच्चे शहीद हो गए ने पर फिर भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं ठीक है मेरे को शस्त्र नहीं रहे बस्त्र नहीं रहे महल नहीं रहे धन नहीं रहा मेरे को मेरे साथी नहीं रहे मेरे बच्चे नहीं रहे पिता का साया नहीं रहा की होया ये कुछ भी नहीं मेरा खुदा तो मेरे हिरदे च बैठा है ते जिन्ने चिर तक वो मेरे साथ है ऐ औरंगजेब मेरी तलवार तेरे कदमों नू रोकती रहे ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श ठीक है मेरे को फौज नहीं धन नहीं संपदा नहीं महल माड़ियां नहीं किले भी ढेरी हो गए पर मेरे को जगत दा मालक जो खुदा है उसकी याद है तो जितने चिर तक मेरे सीने दे ओ बैठा है मैं लावारस नहीं मैं तेरे कदम आज भी रोकांगा तलवार ना इन्ना हौसला माड़ी मोटी गल हो जाए बंदा कह दें पता नहीं परमात्मा है कि नहीं तो मैं अर्ज कर रहे आशीष रब्बी शायर ने रामा अवतार लिखे है कृष्णा अवतार लिखे है चंडी चित्र लिखे है भगवती की वार लिखी है अकाल उस्तत लिखी है विचित्र नाटक लिखे है और ऐसे ऐसे छंद जो कविता का एक कमाल है ऐसे ऐसे गीत जो कहना पैंदा है कोई अवतारी कलाकार ही ऐसा लिख सकता है ऐसा कह सकता है आपकी दृष्टि चली गई द्वापर देश जो कृष्णा अवतार आपने लिखे काश ये देशवासी किधरे पढ़ दे काश किधरे देशवासी तुलसीकृत रामायण दे नाल नाल वाल्मीकि रामायण दे नाल नाल रामा अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी का पढ़ दे ते कुछ बहुत मिलता या असी कुछ इस ढंग का माहौल बना दे ना असी यतन किते ना अगलिया ने कुछ इस ढंग के यतन किए खैर इत में विस्कार गल आ गई पातशाह की दृष्टि पहुंच गई द्वापर दे कई साल तो चंगी बारिश नहीं हो रही जमुना का पानी सुक गया बनस्पति भी सुक गई इस खुश्क माहौल दे मौसमी खजान दे बैठे श्री कृष्ण आपकी दृष्टि एक बांस के बूटे ते चली गई वो एक सोटी तोड़ी लोहे दे औजार नाल ओदियां सत सुरां कीतियां सत सुराख बांस नू सुर दे च करन दी कोशिश कीती बांसुरी बांस सुर दे च हो गया बांस दे चों सुर निकली वो सुर केड़ी निकली धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस देते 75 छंद लिखे ने कृष्ण अवतार दे रूखन ते रस चोवन लाग झरे झर ना गिरते सुखदाई घास चुगे ना मृग बन के खगरीज रहे धुन जा सुन पाई देव गंधार बिलावल सारंग कीरज के जह तान बसाई देव सवै मिल देखत कौतक जो मुरली नंदलाल बजाई नंद दे पुत्र ने ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਰੁੱਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੋ ਨ ਲਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਸ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਕ ਝਰਨੇ ਵੀ ਵਗ ਤੁਰੇ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਧਰੇ ਲਿਸ਼ਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਖੋ ਗਈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਛੁਪ ਗਏ ਵੋ ਸਾਜ਼ੇ ਹਸਤੀ ਛੇੜ ਕਰ ਅਬ ਤੋ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਨਾਦ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦਾ ਘਾਸ ਚੁਗੇ ਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਬਣ ਕੇ ਖਗ ਰੀਝ ਰਹੇ ਧੁਨ ਜਾ ਸੁਣ ਪਾਈ ਇਹ ਧੁਨ ਕੀ ਸੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਰੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਧੁਨ ਛੇੜੀ ਕਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਕਦੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਨਿਰਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਕਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 16 ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ 16 ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚਲਿਆ ਉਹ ਜੋ ਠਾਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਾਤਾ ਅਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਾਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕੁਛ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਕੁਛ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੈ ਕੁਛ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰੂਪ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸਥੂਲ ਦੇ ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ दुनिया है और जो अरूप है वो आत्मा है, वो ईश्वर है। लेकिन ये रूपमान अरूप नहीं होया, ये अरूपमान रूपमान होया है। मैं लवस्तर दोरावा, रूप तो अरूप नहीं होया, अरूप तो रूप होया है। रूप प्रगट अरूप गुपत, दरख्त प्रगट है जड़ा गुपत, मकान प्रगट है बुनियाद गुपत, संसार प्रगट है निरंकार गुपत। उस अरूप तो ये रूप होया, रूप तो अरूप नहीं होया, वो अरूप ही रूपमान होया, वो अरूप रूपमान होया। कहने ने जो रूप नाल जुड़ गए हैं वो कभी दुख दे चौवेगा, कभी सुख दे चौवेगा, कभी हसेगा कभी रोवेगा, सारी जिंदगी दुविधा दे च रहेगा। क्यों? रूप उस अरूप ने ऐसा बनाया है, उस दे च एक नहीं है दो ने। उस एक तो ये जो रूप होया है इसका विभाजन है, ये दो ने। संसार विच एक नहीं दो ने। संसारी किसनों कहते ने जो दो विच जीवदा है, संत किसनों कहते ने जो एक विच जीवदा है। बस मूल गल इतनी मैं कहनी, कौन है संसारी जो दो विच जीवदा है? ते सारा संसार इंज कह लो संसारियां नाल भरिया होया है। कभी कदाई कोई संसार तो उच्चा उठता है, कभी कदाई ये संसार हर एक की सुरत को अपनी तरफ खिंचता है। ये तो विज्ञान की पकड़ दे चाई कि जमीन में कशिश है, जमीन हर चीज को अपनी तरफ खिंचती है। जमीन की इस पकड़, इस कशिश के दायरे तो कोई चीज उच्ची उठ जाए तो फिर जमीन नहीं खिंच सकती। लेकिन जितने चिर तक इसकी कशिश का दायरा है, जिथे तक एक अंदाजे के मुताबिक कोई 400 मील की बुलंदी तक इसका दायरा है, ये खिंचेगी, हर चीज को खिंचेगी अपनी तरफ। कोई कशिश के दायरे चो लंघे, संत की पकड़ दे होर गल भी आई। इस जमीन सिर्फ अस्थूल नो ही नहीं खिंचती, मनुख की सुरत नो भी खिंचती है। सुरत उच्ची करिए जमीन खिंचती है, अगर धन करके सुरत थले आ गई है तो धन जमीन है, रूप करके सुरत थले आ गई है तो रूप जमीन है, खाक है और की है। सब कुछ इस मिट्टी तो मिलता है, सब कुछ इस जमीन दे रही है। सुरत थले हो गई है किधरे पदार्थ करके, तो पदार्थ ते धरती है, सब कुछ धरती है।